बोला पुस्तक 16वीं लेक्चर नंबर 13 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मुनिय परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरैः सिद्ध विज्जैः जासन्तु आभयवदी पश्यौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो भावियो सम्मम् आवहैणान सिद्धिं नाणफलं चाविनिर्वाणम् तो सुदेवयमिणमो दिक्खुत्तोपणमियून भक्तिये गोक्षामि जहासुत्तम चारित्तमोहसखवणवीम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाउर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा इतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक जो चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार हमारा चल रहा है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 143 पर आ गए। 143 शपनासार संबंधी ये चुलिका चल रही है अपनी, और उसमें भी अलग अलग ये जो सूत्र गाथाएं हैं उसके द्वारा वो विषय सारा फिर दोबारा ले रहे हैं। यहाँ हम 10 नंबर की जो सूत्र गाथा है उसको पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये किस संबंधी में है, तो 142 पृष्ठ पर नीचे के दो लाइन में लिखा था, सेकंड लाइन में। अब बादर सांप्रायिक जीव के, बादर सांप्रायिक ने अनिवृत्ति कर नोवा गुणस्था अंतिम समय में सब कर्मों के स्थितिबंध के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए अलग अलग पोजीशन पर स्थितिबंध कितना कितना होता है वो बताते आए हैं, और ये सब दोबारा पहले से बात हो रही है। तो यहाँ नौवे के अंत में स्थितिबंध कितना है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो यहाँ सूत्र गाथा देखते हैं हम। चरी में बादर रागे नामा गोदानी वेदनीयं च वस्सन्तो बंधति दिवसस्सन्तो यजम शेषम। बादर राग के अंतिम समय में क्षपक जीव अब यहाँ मुनि का बंध करेगा कि नहीं करेगा, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में मोहनीय का करेगा कि नहीं करेगा। मैं सूक्ष्म सांप्राय कह रही हूँ, मुझे अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राय कहना, बादर सांप्राय के अंतिम समय में मोहनीय का होगा कि नहीं होगा, होगा। सूक्ष्म सांप्राय में नहीं होगा, हाँ बादर सांप्राय में होगा। अब यहाँ तो नाम गोत्रारण्य की बात करें तो नाम का और गोत्र वेदनीय का कितना है, तो एक वर्ष के भीतर वस्स संतो, जैसे हम अंतर मुहूर्त कहते हैं ना अंतो मुहूर्तांतो, वैसे वस्स संतो यानी अंतो वस्स मिल गए अंतो वर्ष यानी लेस देन वन ईयर, वर्ष के भीतर बांधता है। वर्ष से कम
ऐसा लिखना यानी
और शेष रहे तीन घाती कर्मों को एक दिवस के भीतर बांधता है यानी एक दिवस से कम। हाँ यहाँ 221 नंबर लिखा है ना अभी नीचे, वो 321 चाहिए। ये पैराग्राफ में जो नंबर देते हैं वहाँ दो के बदले तीन करना, 321। हाँ नौवा नौवा गतार्थ होने से सूत्र की गाथा सूत्र की टीका नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार ये बातें आ चुकी है चिलिका का प्ररूपण करने के लिए, तो उक्त सूत्र गाथाओं का पुनः कथन करने पर भी कोई दोष नहीं है। चिलिका है इसलिए वो गाथा है फिर बताएंगे, कोई दोष नहीं है, परंतु फिर दोबारा उसका एक्सप्लेनेशन या उसकी विभाषा जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आगे 11वीं सूत्र गाथा कहते हैं, यानी कितनी गाथा है इस चिलिका में, क्या जो विषय आ चुका है वो भी बताएंगे, जो नहीं आया उसकी भी विशेष बातें करेंगे और समझाने के लिए और अपनी ओर से भी कुछ कहेंगे। अब 11 नंबर की गाथा, जमचा विसंचु हंतो सवे किट्टिम अबंध होते से सोमम संपराए अबंध गो बंदगी राणम। संचुहंतो, संचहंतो हुआ है ना, ग्यारह नंबर में संचुहंतो। यहां कहते उसका अर्थ, जम चावी संचुहंतो, जिस कृष्टि को संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, संचुहंतो खवई, संक्रमण करते करते जिसका क्षय करता है उस कृष्टि का वह क्षपक बंधक नहीं होता, यानी मात्र संक्रमण से क्षय चल रहा है तो उसका बंधक नहीं है। जैसे क्रोध के प्रथम संग्रह कृष्टि का वेदक है, परंतु दूसरी तीसरी का तो वेदक नहीं है, उसका मात्र संक्रमक है, ऐसा ही लेना है ना, क्या सूक्ष्म संप्राय में लेना है इसको, संक्रमण करता हुआ क्षय करता, हाँ उस कृष्टि का वो क्षपक बंधक नहीं होता। तथा, तथा लिखा है, पहले बात है जिसका संक्रमण करता हुआ क्षय करता है उसका बंधक नहीं है, और सूक्ष्म संप्राय में तत्संबंधी कृष्टियों का अबंधक होता है, तत्संबंधी ने वहां सूक्ष्म कृष्टि का वो अबंधक है, तो सूक्ष्म कृष्टि का उदय होते हुए उसका भी बंधन नहीं। हाँ, संक्रमण करता है, वेदन नहीं करता है, उसका नव बंधक का वह बंधक नहीं होता है, किंतु इतर कृष्टियों का यानी वेदन या क्षपण काल में वह बंधक होता है। इस सूत्र गाथा के अर्थ का भी पहले ही अच्छी तरह से निर्णय कराए हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है। इस प्रकार ये 11 सूत्र गाथाएं सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान तक चारित्र मुंह की क्षपणा में चूली का रूप से जाननी चाहिए। आगे क्षीण कषाय के काल में 12वें गुणस्थान में तीन घाती कर्मों का उदय और उदीर्णा आदि रूप विशेष के प्रतिपादन द्वारा उनकी क्षपणा विधि के प्ररूपण करने के लिए, संयोग केवली गुणस्थान के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए 12वीं सूत्र गाथा का अवतार करते हैं। इन्हें यहाँ दो बातें बताएंगे, क्षीण मोह और संयोग केवली की बातें इसमें बताएंगे। जावन छदुम थादो तिन्नम घाती न वेद गो अधनंतरेण खैया सौवदरसीय। यह क्षीण कषाय गुणस्थान वाला क्षपक जब तक छद्मस्थ अवस्था से नहीं निकलता है, तब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा इन तीन घाती कर्मों का वेदक होता है। ऐसा नहीं कहा जब तक उदय तब तक छद्मस्थ रहता है, क्या कहा? जब तक छद्मस्थ अवस्था से नहीं निकलता है तब तक उसका वेदक है। तदनंतर उक्त तीन घाती कर्मों का क्षय करके सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है, यानी 13वें गुणस्थान में आ जाता है 12वें से। यह क्षपक जब तक छद्मस्थ पर्याय से नहीं निकलता है तब तक वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय संज्ञा वाले इन तीन घाती कर्मों का नियम से वेदक होता है, यानी जब तक छद्मस्थ है तब तक इनका उदय है, क्योंकि अन्य प्रकार से छद्मस्थपना नहीं बन सकता। इसके अनंतर समय में द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से नितिन भाई, द्वितीय शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? आपको मालूम? एकत्व वितर्क पृथक खाने एकत्व वितर्क अभिचार विदीर्घ अभिचार। हमने देखा था ना, पहले पृथक वितर्क विचार था, उसमें तो योग से योगांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, अंतर से अर्थांतर वगैरह होता था, पलटना होता था। तो यहाँ तो बस बिल्कुल ये भी वही उतना ही रहता अंतर्मुख तक, और योग भी वही का वही रहेगा। तो कहते द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से समस्त घाती कर्म रूपी वृक्षों के वन को जलाकर, उपमा दी है यहाँ पर। हाँ, छद्मस्थ और छद्मस्थ पर्याय से निकलकर क्षायी की लब्धि का अवलंबन कर, ये तो हमने नौ क्षायिक लब्धि देखी थी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर विहार करता है, यह यहाँ पर गाथा का समुच्चय रूप अर्थ है। इस प्रकार इन 12 सूत्र गाथाओं के अर्थ की विभाषा करके समाप्त होने पर तदनंतर चारित्र मोक्ष अपना नामक अनुयोग द्वार की चूलिका समाप्त होती है। इस प्रकार चारित्र मोक्ष अपना नामक कषाय प्रावृत का 15वां अधिकार समाप्त होता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए उपसंहार वचन को कहते हैं चरित्र मोह खवनाक्ति समत्ता। इस प्रकार चारित्र मोक्ष अपना नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। चारित्र कहते कि चरित्र कहते? हाँ, चरित्र मोह खवना ही विखवना आता है दोनों। इस प्रकार परिभाषाओं के साथ कषाय प्रावृत के सूत्र समाप्त हुए। उन सब का योग 233 है, 233। ये तो कौन सी गाथा सहित सब लिए? वो तो भाष्य गाथा वगैरह सब मिलकर 233 लिए। 12 उसमें ही ले लिए कि 12 के बिना 233 थे? नहीं, 12 के बिना थे, 128 पेज पर 12 के बिना। 12 तो चूलिका के हुए और वहां तो भाष्य गाथा मिलाकर ओरिजिनल तो 180 थे, भाष्य गाथा को मिलाते हुए 233 हो गए, और ये चूलिका के 12 अलग से है। इस प्रकार कषाय प्रावृत समाप्त हुआ। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं, इसको नाम नहीं दिया मेरे तो, अंत में जो प्रशस्ति लिखते हैं उसकी बात। गणहर देवाननमो गोदमलोहज्जजम्बुसामीनम् जिनवरवयण विनिग्रह दिव्वज्जुनि विवरियाजेहिम्। एक एक कहेंगे हम, उसका अर्थ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। जिन्होंने जिनवर के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि को जिनवर वयन विनिग्रह विस्तार से कहा, दिव्वज्जुनि विवरिया जयहिम, जिन्होंने विस्तार से कहा दिव्य ध्वनि को, उन गौतम स्वामी लोहारिया और जम्बू स्वामी आदि गणधरों को हमारा नमस्कार हो। लोहारिया नाम के आचार्य हुए थे, जम्बू स्वामी उनके गणधर थे कि बाद में वो केवली हुए थे? केवली तो हुए ना बाद में। हाँ, तो शायद उनके गणधरों में से हो गए ये बात यहाँ लिखी है। आदि गणधरों को गोदम लोहज जम्बू स्वामी, लोहारे तो हमने सुना था वो उनके बाद। हाँ हाँ, गणधर होते हुए यानी वो महावीर स्वामी के गणधरों में उनका नाम होगा, लोहारी और जम्बू स्वामी को गणधर का। नहीं, अभी पहली बार ये गणधर करके सुना ना उनको।
स्वामी
वो उनके गंधर्व थे कि नहीं थे, वो बाद में केवली हो इसका निषेध नहीं है, उनका गंधर्व होके गए कि नहीं हुए ये बात। वो तो अनुबद्ध केवल ही अलग, उसमें लोहारे को नहीं लेना। अनुबद्ध में जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ उसी दिन ये पहले वाले मोक्ष हुए, ऐसा वो अनुबद्ध केवल ही 12-12 साल हो, नहीं उसमें लोहारे को नहीं लेना। देखेंगे हम निकाल के बाद में, अब 2 नंबर की पढ़ेंगे। ते उसहसेन पौहा गणहर देवा जयन्ति सौवेवी सुदरयणायर पारो। उसमें लोहारी को नहीं लेना। अनुबद्ध में जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ उसी दिन ये पहले वाले मोक्ष हुए, ऐसा वो अनुबद्ध केवल 12-12 साल है, नहीं उसमें लोहारी को नहीं लेना। देखेंगे हम निकाल के बाद में, अब 2 नंबर की पढ़ेंगे। ते उसहसेन पौहा गणहर देवा जयन्ति सौवेवी सुदरयणायर पारो दूरो विपरायो जेहिं। जिन्होंने श्रुतरत्न रूपी सागर से पार होकर उसे दूर से ही पराजित कर दिया है, ऐसे जो वृषभ सेन प्रमुख गणधर हो गए हैं, वे सब भी जयवंत हो। वे वृषभ सेन आदिनाथ के थे ना, वहां से लेकर सभी गणधर उनको नमस्कार, क्योंकि वो तो श्रुत ज्ञान यानी श्रुत रत्न रूपी सागर को पार किया, यानी श्रुत केवली तो थे ही थे, गणधर भी थे, जिनके द्वारा ये हमारे सर्वज्ञ के द्वारा उपदेशित जो जीव धनी की जो बात है, उन्होंने 12 अंगों की रचना की और जीवों का कल्याण हुआ, इसलिए सभी गंधर्वों को नमस्कार करते। यसु मधुर ही गम भंग संकुलम नय सहस गंभीरम गाहा सुतमीणम निस्से संको भणेज छदुमतो। इन गाथा सूत्रों का अर्थ सूक्ष्म है, दुरधिगम्य है यानी कठिनता से समझ में आवे ऐसा है, भंगों से संकुल है, अनेक भंग उसमें बताए हैं और हजारों नयों से गंभीर है, क्योंकि ये सब जिनवाणी जो है नयों उनमें बद्ध होती है, उनके नय यानी एंगल किस अपेक्षा से बताया वो अगर समझ में नहीं आता है तो हमें अर्थभाषित नहीं होता। अतः ऐसा कौन छद्मस्त है जो उसका पूरी तरह से कथन कर सके। तो कहते पहले वो कितना कठिन हुए बताया, अब आगे कहेंगे। तहवि यानी फिर भी, तहवि गुरु संपदायम मणमिकाऊण पूव सूरीणम आदरि सदंसनेन कस्यमेदं दिशामेत्तम। तो भी पूर्व में हुए आचार्यों के द्वारा चले आ रहे गुरु संप्रदाय को मन में धारण करके आदर्श के देखने के समान, आदर्श यानी दर्पण, इसका दिशा मात्र कथन क्या है ना, आदरी से आदर्श के देखने के समान, इसका क्या अर्थ लिखा, इसका दिशा मात्र कथन किया है, या आदर्श यानी दिखाने वाला। अब पड़लं वसुत्तं बहुभंग तरंग भंगुरं जम्मा विथार जानयेम विथरि यौवं भवेतम्मा। यतने क्योंकि यह सूत्र ग्रंथ मेघ पटल के समान बहुत प्रकार के तरंगों से भंगुर है, अतः विस्तार को जानने वाले पुरुषों के द्वारा इसका विस्तार से वर्णन किया जाना चाहिए था। यानी जो विस्तार को जानते हैं तो कहते उनको जरूर इसका कथन करना चाहिए। जम एथलियम सत्तखलियम जजुन हवे किंची तम पूरेन्तु महंता मिच्छा मे दुक्कड़म तस्। इसके कथन में मेरे द्वारा जो कुछ भी अर्थ का स्खलन हुआ है या जो कुछ शब्दों का स्खलन हुआ है उसे महापुरुष पूरा करे। उस संबंध विषयक मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, यानी जो कुछ चूक हुई है वो उसका वो मेरा दुष्कृत वो मिथ्या हो जाए। हम तो केवल वो तो अर्थ बिना समझे मिच्छा में दुख करो। आगे हो इसुगमं पि दुग्गम मण्यूण वक्खाण कार दोषेण जय धवला कुशलाणम सुगमच्छिय दुग्गमावि अथ गई। जो महानुभाव इन महान पुरुष को या भद्र जीव हम कहेंगे इसके व्याख्यान करने में निपुण नहीं है, उनके उस दोष के कारण इसका व्याख्यान सुगम होकर भी दुर्गम हो जाता है। यानी जो ये बात ठीक तरह से नहीं कह सकते तो ये सरल होते हुए भी कठिन हो जाता है, तथा जो जयधवला के द्वारा इसका व्याख्यान करने में कुशल है उनके लिए इस कषाय प्रावृत के अर्थ का ज्ञान दुर्गम होते हुए भी सुगम हो जाता है। पेज नंबर 145 दुग्गम मणिगुण दुग्गम अणिगुण अणिगुण। अच्छा वो मणि नहीं अणि है, वो बीच में वो डैश नहीं चाहिए। दुग्गम मणिगुण वक्खाण कार दोषेण, दुग्गम होने पर भी अनिपुण वक्ता के कारण वगैरह वगैरह। 146 पर आ गए पश्चिम खंड अध्याय यार, यहाँ कोई है कि करेक्शन नहीं। यहाँ ऊपर पढ़ेंगे शब्द ब्रह्मेति शाब्देर गणधर मुनिरित्येव राधान्त विद्भिः साक्षात् सर्वज्ञैव इत्य अवहितमतिभिः सूक्ष्म वस्तु प्रणीतौ यो दृष्टो विश्वविद्या निधिरिति जगति प्राप्त भट्टारकाख्या स श्रीमान वीरसेनो जयति परम तद्वांत वित्रंतकार। जो वीरसेन स्वामी वैयाकरणों के द्वारा शब्द ब्रह्म माने गए हैं, शब्द ही गणधर मुनि इत्येव राधांत विधि सिद्धांत के ज्ञाताओं के द्वारा जो गणधर मुनि माने गए हैं, अवहित मति वालों के द्वारा सूक्ष्म वस्तु की रचना में जो साक्षात सर्वज्ञ ही स्वीकार किए गए हैं और जो विश्व विद्या निधि के दृष्टा है तथा जिन्होंने लोक में भट्टारक संज्ञा को प्राप्त किया है, वे परमत रूपी अंधकार को भेदने वाले सिद्धांतकार श्रीमान वीरसेन स्वामी जयवंत हो गए। अभी यहाँ वीरसेन स्वामी क्या वर्णन लिखने वाले तो बाद में ये पूरा किया ना, उनके जयसेन होने चाहिए उनके शिष्य जो वीरसेन के, या यतिवृषभ आचार्य ने ये बताए ये तो ना 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 ये तो यतिवृषभ आचार्य ने कहा है। सूत्र जिन्होंने लिखे ना इस पर कषाय पाहुड़ हुए, फिर उस वीरसेन स्वामी ने उसकी टीका की। सूत्र तो यतिर्षु आचार्य ने लिए होंगे, तो वीरसेन स्वामी ने तो उसके पश्चात में, यतिर्षु आचार्य पहले हुए फिर वीरसेन स्वामी हुए, और उनके शिष्य ने ये लिखा है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने ये पूरा किया बाद में आएगी बात। अभी आगे का, जेते तिलोय मथय सिहामणि गुण मयूह विपुरिया सिद्धा जयंति सौवे लद्ध सहावा विबुद्ध सौवत्था। जो तीन लोक के मस्तक के शिखामणि के समान है, शिखामणि समझते, चूड़ामणि शिखामणि यानी टॉप मोस्ट जो माथे पर ग्रहण करते हैं रत्न, उसको कहते हैं शिखामणि। लोक के मस्तक के शिखामणि के समान है, ये लोक के मस्तक के यानी लोक यानी पूरा लोकाकाश, उसके मस्तक पर कौन, वहां टॉप मोस्ट कौन रहते हैं, तो सिद्ध भगवान। तो जो तीन लोक के मस्तक के शिखामणि के समान है, यानी जैसे लोक में मुकुटमणि धारण किया है, शिखामणि कहो मुकुटमणि कहो चूड़ामणि को एक ही बात है, जो गुणरूपी किरणों को विस्फुरित करने वाले हैं, जिन्होंने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, और जो तीनों लोकों के समस्त पदार्थों के तीनों कालों के, मैंने लोकों की बताया, तीनों कालों के समस्त पदार्थों के जानकार है, वे सब सिद्ध जयवंत रहे। आगे कहते हैं पद्धोरियधम अपहा जेसिम ओ जेसिम नवप्यारा केवल लद्दिपहा परिफुरई भव्य जन कमल बोहण दिवाय राते जयंती अरहंता। जिनकी नौ प्रकार की केवल लब्धियों की प्रभा, प्रभा यानी उसका तेज, उसका प्रकाश स्फुरित हो रही है, स्फुरित हो रही है ना, जैसे सूर्य में से प्रकाश फुरायमान होता है ऐसे, तथा जो भव्य जन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए दिवाकर के समान है। कमल भी दो प्रकार के होते मालूम है, एक तो होते सुबह विकसित हो जाते, जैसे सूर्य की प्रभा आती है वैसे वो विकसित होते हैं, और दूसरे भी होते हैं ना चंद्र के प्रकाश में होने वाले, उसको क्या कहते हैं, उसको कुमुदिनी कहते हैं। और ये तो सूर्य के प्रकाश में, तो दिवाकर है ना सूर्य, तो ये कैसे है, तो भव्य जन है, उनको कमलों की उपमा दी है, भव्य जन रूपी कमलों को विकसित करने वाले, जैसे कमलों को दिवाकर ने सूर्य विकसित करता है, वैसे भव्य जन रूपी यानी भव्य जनों को विकसित करने वाले कौन है, ये अंतर परमेष्ठी है, वो जयवंत रहे, यानी ये अंतिम मंगल कर रहे हैं यहाँ पर ग्रंथ के अंत में, पंच परमेष्ठियों की बात लेते हैं। आगे चौथा नंबर पद्धोर्यधम अपहा निधोय कलंक धवल चारिक्तधया सद्धम मधोरियाते सुद्धिम मेदेन्तु सूर्यवर सत्थवहा। जिन्होंने धर्म पथ की धुरा को अच्छी तरह से धारण किया है, धुरा समझते हैं? धुरा यानी एक्चुअली वो धुरा धारण करने नहीं, वो धुरावान जवाबदारी, ये तो अर्थ में लिया है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी लेना। तो धर्म पथ की धुरा को अच्छी तरह से धारण किया है, धर्म पथ कहो मोक्ष मार्ग कहो, जो अंतरंग और बहिरंग कलंक को धोकर उज्जवल चारित्र रूपी ध्वजा धारण करने वाले हैं, और जो सद्धर्म के धारण करने वालों में अग्रणी है, अग्रणी यानी प्रमुख है, आगे वाला, वे सूर्य वर रूपी, सूर्य ने आचार्य, वर ने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ आचार्य रूपी सार्थवाह हमें शुद्धि प्रदान करें। सार्थवाह यानी वो तो आगेवान जैसे सारथ्य करने वाले सार्थवाह जो है, सूर्यवर रूपी सार्थवाह हमें शुद्धि प्रदान करे। नहीं नहीं नहीं, सार्थवाह उसका विशेषण बनाया है, आप निकालना वो डिक्शनरी सार्थवाह रूपी, रूपी लिखा ना सूर्यवर रूपी सार्थवाह। सार्थवाह ने जैसे सारथी कहते हैं या ऐसा को मोक्ष मार्ग की वो धुरा वाहन कर, हाँ चलाने वाले आचार्य उनका। देखो पहले सिद्ध जयवंत वर्ते अरिहंत तीसरे में हुए, अभी यहाँ आचार्य हुए सूर्यवर, आगे उपाध्याय कहेंगे। सूर्य सूर्य के थे ना अमृत चंद्र सूर्य, सूर्य ने आचार्य। आगे पांच नंबर, अज्जप बीज निरूणा सज्जा यजान जोग संयुक्ता सज्जन कमल विबोहन सुज्जा पसियंतु छाया। जो अध्यात्म विद्या में निपुण है, अज्जप बीज निरूणा सज्जा यानी स्वाध्याय, जो स्वाध्याय झान यानी ध्यान और योग से संयुक्त है, तथा जो सज्जन रूपी कमलों को विकसित करने में सूर्य के समान है, ये सज्जन यानी जो उनका उपदेश सुनने वाले हम जैसे जो है उपाध्याय का उपदेश सुनने वाले, अन्य जो अन्य मुनिगण भी और अन्य सभी श्रावक भी सूर्य के समान है, वे उपाध्याय परमेष्ठी हम पर प्रसन्न हो पसियंतु में उच्छाया। अभी मुनियों को करेंगे, हाँ विशेषण ही है, बताए ना पहले ही बताया था, रूपी बताया ना जैसे भविजन कमल बोहन का भविजन रूपी कमलों को, ऐसे सूर्यवर रूपी सार्थवाह को। अब छह नंबर, जय मोह सेन पश्चिम खंदम भेतून अग्निम खंदे लद्ध जया शुद्ध गुणा जसु भड़ाते जयंती मुनि सुभड़ा। जिन्होंने मोहरूपी सेना के अंतिम स्कंद को भेद कर अग्रिम स्कंद में जय को प्राप्त किया है, इस स्कंद शब्द से भी द्व्यर्थी लिया, ये पश्चिम स्कंद है ना, तो मोहरूपी सेना का स्कंद है ना उनका ग्रुप समूह, जो शुद्ध गुणों से युक्त है और जो अक्षुण्ण कीर्ति के धनी हैं, वे मुनि सुभट जयवंत हो, मुनि रूपी सुभट जयवंत हो, ऐसा भी कह सकते हैं। मुनियों को नमस्कार किया, अक्षुण्ण कीर्ति, अक्षुण्य ने जिनकी कीर्ति कायम रहती है, ऐसी अक्षुण्ण कीर्ति यानी बहुत बड़ी कीर्ति के धनी हैं ऐसे। इस आगे इति पंच गुरु नेतान प्रणम्य कृत मंगल वक्षामि पश्चिम स्कंदम श्रुत स्कंदाग्र चूलिकाम। इस प्रकार इन पांच गुरुओं को प्रणाम करके मंगलाचरण को संपन्न करने वाला मैं श्रुत स्कंद की मुख्य चूलिका स्वरूप पश्चिम स्कंद का व्याख्यान करूंगा। हाँ हाँ, ये पहला वाला अलग है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो कोई टीका लिखते हैं वो पहले वहाँ पर अपना लिख देते हैं और बाद में मूल वहाँ आती है गाता है, जैसे टोडरमल जी अपना मंगलाचरण लिखते हैं और फिर मूल जो कुछ हो गए उसके बाद लिखेंगे, ऐसे ही। हाँ, ये सिद्ध अयंत सिद्ध वगैरह क्रम से पांच को नमस्कार किया था ना उन्होंने, यानी दूसरा तीसरा और ये सातवें तक, ये तो एक ही रचना है और ऊपर जो लिखा है वो अलग है। तो श्वेत स्कंध की मुख्य चूलिका रूप पश्चिम स्कंध लिखा है इसका, इसका नाम है पश्चिम स्कंध। अब यहाँ बता रहे हैं, यानी ये सब सूत्र ही है। पश्चिम खंडेति अनुयोग द्वारे तम्मी इमाम अग्गणा, पश्चिम स्कंध नामक अनुयोग द्वार में यह मार्गणा अधिकृत है। मार्गणा ने भी जो हम कुछ ढूंढते हैं ना खोज, पश्चिम स्कंध नाम का जो यह अर्थाधिकार है वह समस्त श्रुत स्कंध की चूलिका रूप से अवस्थित है, उसका व्याख्यान करने पर उसमें यह मार्गणा अधिकृत है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जो अंत में होता है वो पश्चिम, पश्चिम जो स्कंद है वो पश्चिम स्कंद है। घाती कर्मों के क्षीण हो जाने पर जो अघाती चतुष्क स्वरूप कर्म स्कंद पश्चात उपलब्ध होता है वह पश्चिम स्कंद कहा जाता है। कर्म स्कंद के लिए पश्चिम स्कंद का, इसलिए ऊपर जो बात थी मोहसेना का पश्चिम स्कंद भेदतुन, क्योंकि क्षय के अभिमुख हुए सबके सबसे अंतिम उसकी उस प्रकार की संज्ञा की सिद्धि न्याय प्राप्त है, यानी उसको हम कह सकते हैं क्योंकि अंत में बचा हुआ स्कंद है कर्मों का, इसको पश्चिम स्कंद कहेंगे। अथवा जिनके आवरण कर्म क्षीण हो गए हैं, ऐसे केवलियों के जो तेजस शरीर और कार्मण शरीर के साथ प्राप्त होने वाला अंतिम औदारिक शरीर नौ कर्म स्कंद होता है वह भी पश्चिम स्कंद है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह सबसे अंतिम है। जब हमने पुद्गल की वर्गणाएं वगैरह देखी थी उसकी बात की थी, वो सबका मिलकर एक वहां समूह पड़ा है, औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, सबके परमाणु है, वो सबका क्षय करके जाएंगे सिद्धावस्था में। तथा अयोगी केवली के अंतिम कार्मण स्कंद के साथ अंतिम औदारिक शरीर स्कंद से संबद्ध जो जीव प्रदेश स्कंद है वह भी पश्चिम स्कंद है, ऐसा यहाँ व्याख्यान करना चाहिए। क्या कहने चाहते, ये तो जीवों के प्रदेश जो है वहाँ क्या क्या है उसके साथ, कार्मण स्कंद भी है, औदारिक शरीर के परमाणु भी वहाँ पड़े हैं, क्योंकि तद विषय केवली समुद्घात और योग निरोध आदि क्रियाओं का इस अधिकार में निरूपण उपलब्ध होता है। इन्हें भी घाती कर्म शेष निशेष नष्ट हो गए हैं, अघाती बाकी है, तो समुद्घात के पूर्व तक की प्ररूपणा उन्होंने बताई। अब समुद्घात होता है, योग का निरोध होता है, वो सब बातें इसमें आ जाएगी। इसलिए इस प्रकार के पूरे पश्चिम स्कंद का प्ररूपण करने वाला होने से यह अर्थाधिकार पश्चिम स्कंद ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पहले तो उसको क्या नाम दिया था, कषाय पाहु, है ना, कषाय प्रावृत को कषाय पाहु, तो उसमें तो मोहिनी की बात थी और इसलिए वो कषाय पाहु वहीं पर समाप्त हुआ। अभी मोहिनी भी नहीं है, तीन घाती भी नहीं है, अब क्या बचा है, तो अघाती, तो उसके जो कुछ वहां बातें बनती है, क्रियाएं बनती है, उसके लिए पश्चिम स्कंद नाम दिया। यहाँ पर ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि भाष्य गाथाओं के साथ 180 मूल गाथाओं के साथ संबंध रखने वाले अर्थ के व्याख्यान द्वारा कषाय प्रावृत के विस्तार से प्ररूपण करके समाप्त होने पर फिर किस लिए पश्चिम स्कंद संज्ञा वाले इस अर्थाधिकार का अवतार किया जा रहा है, क्योंकि क्षपनाधिकार के संबंध से ही पश्चिम स्कंद का अवतार स्वीकार किया है, यानी वो क्षपना का ही अधिकार है, यहाँ पर भी क्षपना ही हो रही है और अघाती कर्मों की क्षपना के बिना क्षपणाधिकार संपूर्ण नहीं होता क्योंकि ऐसा स्वीकार करने में विरोध आता है। यानी एक क्षपणासार का ही पार्ट मानो ना, इसको पश्चिम स्कंद नाम क्यों दिया ये प्रश्न है। इसलिए क्षपणाधिकार से संबंध से ही उसकी चूली का रूप से इस पश्चिम स्कंद अधिकार का प्रोपण किया जा रहा है। इस प्रकार यह सब सुसंबद्ध ही है, यानी उसकी चूली का रूप से इसको मानो, उसमें कोई दोष नहीं। पेज 148 में जो कुछ करेक्शन संबंधेनेव वो ब के ऊपर बिंदी नहीं है ना, यहाँ पर संबंधेन एव संबंधेन व संबंधेन एव वो हमारे में करेक्शन किया हुआ है, हमारे ब की बिंदी हट गई है। मानो उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, पेज 148 में जो कुछ करेक्शन संबंधन है वह संबंधेन एव वो ब के ऊपर बिंदी नहीं है ना, यहाँ पर संबंधेन एव संबंधेन व संबंधेन एव वो हमारे में करेक्शन किया हुआ है, हमारे ब की बिंदी हट गई है। चौथी लाइन की बात कर रहे हैं ना,
सातवीं लाइन में अंत का शब्द है ना,
अंत में संबंधे ने व। अच्छा अच्छा ने व निखीयमाणो न निखीयमाणो अभी ये 148 में ही जो हमने सात नंबर है, छह नंबर की लाइन में मैं बता रही हूँ, सुनो। खवणा ही यार संबंधेने व हुआ, संबंधेने व चाहिए, ब के ऊपर बिंदी लगाओ। हाँ चलो अभी पढ़ेंगे। शंका, महाकर्म प्रकृति प्रावृत के 24 संयोग द्वारों से संबंध रखने वाले इस पश्चिम स्कंद नामक अधिकार का यहाँ कषाय प्रावृत में कैसे प्ररूपण किया जा रहा है, क्योंकि पूरे श्रुत स्कंद की चूली का बताई नहीं इन्होंने। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि महाकर्म प्रकृति प्रावृत और कषाय प्रावृत दोनों ही आगमों में उसका संबंध स्वीकार करने में बाधा नहीं उपलब्ध होती, इसलिए हमने यह अच्छा ही कहा है कि प्रसिद्ध संबंध वाला जो पश्चिम स्कंद नामक अर्थाधिकार है अधिकार है वह पूरे श्रुत स्कंद का चूलिका रूप से व्यवस्थित है। पूरा जो श्रुत स्कंद, स्कंद ने शाखा पूरी श्रुत की, उसका इस समय व्याख्यान करेंगे, उसमें यह अर्थ मार्गणा अधिकृत है। यह इन्हें जो बताएंगे अर्थ मार्गणा, अर्थ की जो कुछ बात है उसको बताएंगे, परंतु वह अर्थ मार्गणा इस प्रकार जाननी चाहिए, ऐसा प्रतिपादन की इच्छा रखने वाले आचार्य यति ऋषभ इस सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यानी ये जो रचना यति ऋषभ की ही पश्चिम स्कंद की चुलिका कहते, अंतो मुहूर्ते आओगे शेषे तदो आवज्जित करणे कदे तदो केवली समुद्घादम करेगी। आयु कर्म के अंतर्मूर्त शेष रहने के बाद, यानी शेष रहने पर, यानी अभी चौदहवे का तो अंतर्मूर्त छोड़ दो, तेरहवे के अंत में अंतर्मूर्त बाकी है, क्योंकि अभी केवली समुद्घात तेरहवे में होता है अंत में, तो यहाँ आवर्जित करण नाम का करण है। यानी क्या ना, आयु कर्म के अंतर्मूर्त शेष रहने के बाद आवर्जित करण के किए जाने पर तदनंतर अरहंत देव केवली समुद्घात करते हैं। ये हर जगह समुद्घात किया, परंतु वो समुद्घात चाहिए, वो घ नहीं है नीचे लगाया, वो घ समझना। केवल ज्ञान को उत्पन्न करके तथा सत्स्वस्थान सहयोगी केवली होकर, स्वस्थान का अर्थ है अभी समुद्घात नहीं किया है तब तक उसको स्वस्थान कहेंगे। उत्कृष्ट से कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विहार करके, क्योंकि जब से केवल ज्ञान प्राप्त किया है तब से ये स्वस्थान सहयोगी हुए हैं, तो अर्ली 60 वर्ष और कुछ अंतर्मुर्त के बाद हो जाएगा और पूर्व कोटि की आयु है, तो लास्ट एक अंतर्मुर्त छोड़ दो और पहले के 8 वर्ष और कुछ अंतर्मुर्त छोड़ दो, तो ये बाकी काल सहयोग केवली अवस्था में है। तो इतना विहार करके तत्पश्चात आयु कर्म के अंतर्मुर्त शेष रहने पर ये समुद्घात क्यों करते हैं? तो अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए। देखो आयु कर्म की जितनी स्थिति उतनी तो रहती है, एक एक समय में एक एक निषेक गलेगा, उसमें तो कुछ ना उदीर्ण कुछ अपकर्षण हो रहा है, यानी कैसा आयु वैसे नहीं घट रही जैसे स्थिति कांडक वगैरह, आयु में कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा उसमें? आयु के निषेक मान लेते अंतर्मूर्त प्रमाण 100 मान लेते और नाम गोत्र वेदिनी की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण भी हो सकते। तो अभी सबकी स्थिति समान तो चाहिए, ऐसी समान करेंगे कि बाद में एक एक निषेक हरेक का गलेगा। तो वो समान करने के लिए पहले आवर्जित करण नाम की दूसरी क्रिया को आरंभ करता है। आवर्जित करण में और कुछ नहीं होता है, बस केवली समुद्घात होने वाला है उसके अभिमुख होता है, ऐसा कहेंगे। तो शंका, आवर्जित करण क्या है? समाधान, केवली समुद्घात के अभिमुख होना आवर्जित करण कहा जाता है। अब ये नियम से नहीं होता है, जिसकी स्थिति समान नहीं हो उसके लिए हो सकती है दीक्षा, हो सकना अलग बात है, होती ही है अलग बात। समान क्यों करेंगे? उसमें कोई हीना दिखता होगी तो समान करेंगे, अगर हीनादिक नहीं है तो क्यों समुद्घात नहीं करेंगे? उसे यह अंतर्मूर्त काल तक पालन करता है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल तक आवर्जित करण हुए बिना केवली समुद्घात क्रिया का अभिमुखी भाव नहीं बनता। यानी उसके समुद्घात के पहले अंतर्मूर्त तक उसको आवर्जित करण करेंगे, उसी काल में ही यानी आवर्जित करण में ही नाम गोत्र और वेदिनी कर्म के प्रदेश पिंड का आकर्षण करके उदय में थोड़े प्रदेश पुंज को देता है, यानी गुण श्रेणी की रचना होती है। अनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है, इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ शेष रहे सहयोगी के काल से और अयोगी के काल से विशेष रूप से अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक जाता है। परंतु यह गुण श्रेणी शीर्ष स्वस्थान सहयोगी केवली द्वारा उसके अनंतर अधस्तन समय में वर्तमान रहते हुए निक्षिप्त किए गए गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुणहीन स्थान जाकर अवस्थित है, ऐसा जानना चाहिए। परंतु प्रदेश पुंज की अपेक्षा उससे यह असंख्यात गुणे प्रदेश विन्यास से उपलक्षित होता है। क्या कहना चाहते हैं? जब तक स्वस्थान केवली था गुणश्रेणी तो सबसे चल ही आ रही थी, अवस्थित प्रमाण में गुणश्रेणी का निषेक हो रहा था, उसके जो निषेक जो है नंबर ऑफ निषेक इसमें गुणश्रेणी रूप से दे रहे थे। अब इस यहाँ क्या हो रहा है? अभी जो उसका गुणश्रेणी का शीर्ष है वो नीचे आया है। हमने देखा जहां असंख्यात गुणा होती है निर्जरा बढ़ जाती है वहां उसका आयाम छोटा होता है, ये यहां तक ही ये शीर्ष होगा, ये पुराना शीर्ष था, ये नीचे नया शीर्ष है। इस वाक्य को फिर पढ़ेंगे। ये जो आवर्जित करण है उसमें क्या होता है कि नाम गोत्र वेदिनी का प्रदेश पिंड का आकर्षण करके उदय में थोड़ा दिया जाता है, जैसे हर बार गुण श्रेणी में दिया जाता है, उसके असंख्यात गुण असंख्यात गुण असंख्यात गुण देता है। तो असंख्यात गुण असंख्यात गुण कहाँ तक देता है, तो ये गुण श्रेणी का प्रमाण कितना है, तो अभी जितना भाग संयोग के विलय का जितना बाकी है और अयोग की जितना बाकी उससे थोड़ा ज्यादा। अब ये जो विशेष रूप से अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक जाता है, यानी उसका गुण श्रेणी शीर्ष बचे हुए संयोग अयोगी के काल जितना है, ऐसे यहाँ तक हम समझे। परंतु कहते यह जो गुण श्रेणी शीर्ष है वो स्वस्थान केवली के द्वारा उसके पूर्व समय में अनंत राधस्थन ने पूर्व समय में रहते हुए निक्षिप्त कहे गए गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुणहीन स्थान जाकर अवस्थित है, यानी वहां का जो गुण श्रेणी आयाम था उससे संख्यात्वा भाग नीचे जाकर संख्यात गुणहीन, तो कहते वहां पर ही अवस्थित है। यानी यहाँ पर ये मान लेते यहाँ इतनी बड़ी गुण श्रेणी आयाम था, अब वो इतना रह गया, पहले जितनी गुण श्रेणी थी ना उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण रह जाएगी। यहाँ लिखा ना पहले जितना आयाम था उससे संख्यात गुणहीन स्थान जाकर ये अवस्थित है, यानी ये गुण श्रेणी का जो शीर्ष है वो नीचे आया, पूर्व गुण श्रेणी से ये नीचे आया, तभी तो गुण श्रेणी असंख्यात गुणा अधिक हो जाएगी। पूर्व से जे स्वस्थान केवली की अपेक्षा समुद्रात वाले के असंख्यात गुणा निर्जरा बताई उस कारण से। हाँ रही जाए, पहले जितनी गुण श्रेणी थी ना उसके संख्यात्वे भाग प्रमाण रह जाएगी। यहाँ लिखा ना पहले जितना आयाम था उससे संख्यात गुणहीन स्थान जाकर ये अवस्थित है, यानी ये गुण श्रेणी का जो शीर्ष है वो नीचे आया, पूर्व गुण श्रेणी से ये नीचे आया, तभी तो गुण श्रेणी असंख्यात गुणा अधिक हो जाएगी। पूर्व से जे स्वस्थान केवली की अपेक्षा समुद्रात वाले के असंख्यात गुणा निर्जरा बताई उस कारण से। हाँ निर्वाण गुण श्रेणी नहीं है अभी, समुद्रात किया नहीं है, परंतु गुण श्रेणी की ये अलग टाइप रचना हो गई। हाँ यानी नंबर ऑफ निषेक उसमें कम, वहां तक गुणित प्रमाण में दिया, पहले अधिक निषेकों में माल बटता था, अभी कम निषेकों में बटेगा, माल तो अधिक आएगा। हाँ और प्रदेश पुंज की अपेक्षा प्रदेश कितना देता है, पहले जितना देता था उससे असंख्यात, तो प्रदेश पुंज की अपेक्षा उससे यह असंख्यात गुणा प्रदेश विन्यास से उपलक्षित होता है। ये जो गुण श्रेणी शीर्ष है एक तो नीचे आया है और पूर्व गुण श्रेणी में जितना मिलता था उससे बहुत असंख्यात गुणा इसमें मिलता है, क्योंकि पहले तो अधिक निषेकों में बटता था, अभी कम निषेकों में बटेगा, उसमें अधिक मान मिलेगा, अधिक असंख्यात गुणा मिलेगा। शंका, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, यह 11 गुण श्रेणियों के स्वरूप का निरूपण करने वाले गाथा सूत्र से जाना जाता है। जो बात हमने बहुत बार देखी थी तत्वार सूत्र में भी सूत्र है, ये सूत्र गाथा तो है ही है। तो जैसे जब पहली बार प्रथम उपशम होता है वहां जितनी गुण श्रेणी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणा पांचवे में, उससे असंख्यात गुणा संयमी के, उससे असंख्यात गुणा अनंत अनुबंधी के विषय में आदि आदि 11 स्थान बताए। सबसे लास्ट वाला ये समुद्रघात के लिए यहाँ वो कारण है समुद्रघात, समुद्रघात की अपेक्षा यहाँ घटता है, यही उसका एक मेव कारण है। यहाँ विशुद्धि को मत लेना, फिर भी समुद्रघात कुछ विशेष क्रिया हुई है, विशुद्धि नहीं बदली है, समुद्रघात होने की जो क्रिया हो रही है उसके कारण यहाँ गुण श्रेणी का प्रमाण बदल गया। तो कहते अभी आगे उस गुणश्रेणी शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में भी, ये गुणश्रेणी में जितना माल बटता है उसके ऊपर में भी असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को ही सींचता है और उसके ऊपर सर्वत्र विशेषहीन प्रदेश पुंज को ही निक्षिप्त करता है। जैसे हमने पहले भी देखा था गुणश्रेणी में तो माल नीचे से आता है उसका भाग उसमें देता है और ऊपर जो मिलता है वो ऊपर के उसमें से मिलता है, फिर भी वहां असंख्यात गुणा द्रव्य दिया जाता है। इस प्रकार आवर्जित करण काल के भीतर सर्वत्र गुणश्रेणी निक्षेप जानना चाहिए, यहाँ पर दृश्यमान प्ररूपणा जानकर ले जाना चाहिए। कितना दिया जाता है उसको कहेंगे दियमान। तो दृश्यमान कैसे दिखेगा, तो उदय के समय से लेकर गुणश्रेणी, केवल गुणश्रेणी तक नहीं रुकना, उसके ऊपर के निषेक तक असंख्यात गुणा दिखेगा और बाद में विशेषहीन विशेषहीन। हाँ शंका, आवर्जित क्रिया के अभिमुख हुए संयोग केवली के यह गुणश्रेणी निक्षेप स्वस्थान संयोग केवली के समान अवस्थित आयाम वाला होता है या गलित शेष आयाम वाला होता है। समाधान, निक्षेप रूप करने की क्रिया में यह अवस्थित आयाम वाला होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए। यानी जिसने अभी आवर्जित किया नहीं किए उसके अभिमुख वाला जीव उसकी बात की थी तो उनका तो आयाम अवस्थित था पहले से। इससे आगे संयोग केवली के द्विचरम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के प्राप्त होने तक इस विषय में अवस्थित रूप से इस गुणश्रेणी निक्षेप संबंधी आयाम की प्रकृति का नियम देखा जाता है और यह असिद्ध नहीं है क्योंकि यह सूत्र से अविरुद्ध परम गुरुओं के संप्रदाय के बल से सुनिश्चित होता है। यानी यहाँ जो स्थिति कांड घात हो रहे हैं किसमें कौन से कर्म, नाम गोत्र वेद, यानी उसके जो सिद्धि कांडक होते थे द्विचरम सिद्धि कांडक तक उसके अंतिम फाली के प्राप्त होने तक ऐसा ही चलेगा। शंका, स्वस्थान केवली के या आवर्जित क्रिया के अभिमुख हुए केवली के अवस्थित एक रूप परिणाम के रहते हुए इस स्थान में गुणश्रेणी निक्षेप का इस प्रकार विसदृष्पना कैसे हो गया, इसका क्या कारण है, प्रश्न था ना आपका। समाधान, यहाँ पर ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि वितरण परिणामों में भेद का अभाव होने पर भी वे अंतरंग परिणाम विशेष अंतर्मूर्त प्रमाण आयु की अपेक्षा सहित होते हैं। यानी वो अंतर्मूर्त प्रमाण आयु की आयु बाकी है वही उसका कारण, क्योंकि उतने में सभी कर्म खिरने चाहिए। वे अंतरंग परिणाम विशेष अंतर्मूर्त प्रमाण आयु की अपेक्षा सहित होते हैं, वो परिणामों में भेद नहीं है परंतु यहाँ उस परिणाम के साथ अंतर्मूर्त प्रमाण आयु बाकी है ये कारण मिल जाता है। और आवर्जित करण क्रिया के भेद रूप साधन भाव से प्रवृत्त होते हैं, यानी क्रिया का भी भेद हुआ ना, आवर्जित करण हुआ वहां पर, ये गुणश्रेणी का जो कुछ निक्षेप वो छोटा हो गया वगैरह वगैरह ये जो क्रिया हो गई, इसलिए यहाँ पर गुणश्रेणी निक्षेप के विसदृश होने में प्रतिबंध का अभाव है, इन्हें होता ही है। इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक आवर्जित करण विषयक व्यापार विशेष का अनुपालन कर, यानी वहां जो कोई स्थिति कांड घात होते थे वो गुणश्रेणी ऐसे हो गई थी उसके अलग प्रमाण, उसके समाप्त होने पर यानी ये अंतर्मूर्त समाप्त होने पर इसके बाद अनंतर समय में केवली समुद्घात को करता है, यही सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। अभी द्विचरम तक आ गए वो, अंतिम कांड तो पूरा एक वहां लेंगे जब समान स्थिति हो जाएगी। बरोबर है, हाँ, क्योंकि उसकी खाली होगी ना अलग अलग, और जब अंतिम कांड की अंतिम खाली गिर जाएगी तब सबकी समान स्थिति हो जाएगी, बाद में स्थिति कांडक नहीं होंगे। तो केवली समुद्घात किसका नाम है? शंका, समाधान कहते हैं उद्गमन का अर्थ उद्घात है। उद्गमन यानी प्रदेश शरीर से फैल जाते हैं। समुद्घात किसको कहना? देखो समुद्घात की परिभाषा कैसी हम कहते हैं, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसको कहेंगे समुद्घात। तो मूल शरीर में भी है और प्रदेश कुछ बाहर भी है, तो जो प्रदेश बाहर आते हैं तो उसमें कारमान तेजस शरीर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, नहीं तो वो उतने सिद्ध मुक्त हो गए मानना पड़ेगा। उद्घात यानी वो जीव के प्रदेशों का फैलना, इसका अर्थ है जीव के प्रदेशों का फैलना। समीचीन उद्घात को समुद्घात कहते हैं। केवलियों के समुद्घात का नाम केवली समुद्घात है। समीचीन यानी योग्य, सम्यक उद्घात, जीव के प्रदेशों का फैलना। तो कहते अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए केवली जीव के प्रदेशों का समय के अविरोध पूर्वक, समय ने जैसा आगम में बताया है उसी प्रकार से ऊपर नीचे और तिरछे फैलना, तिरछे ने हॉरिजॉन्टल, केवली समुद्घात है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ केवली समुद्घात पद में, पद यानी शब्द में, केवली विशेषण शेष समस्त समुद्घात विशेषों के निराकरण करने के लिए जानना चाहिए। शेष सब समुद्घात विशेष यानी अन्य अन्य प्रकार के समुद्घात। प्रेरणा बिन कौन कौन से समुद्घात मालूम है आपको? कितने होते हैं वो ये नंबर बताओ? सात होते हैं। हाँ बोलो, आप बताएंगे। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात। हाँ बोलो अभी। आहारक, तेजस और केवली। तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात। क्योंकि आहारक शरीर बनाते और वहां जाते तो प्रदेश भी फैलते ना इन बिटवीन, एक तो मूल शरीर और एक आहारक शरीर। वो आहारक शरीर तो वहां तीर्थंकर के पास चला गया, तो क्या वो टुकड़ा होकर गया ना, बीच में आत्म प्रदेश हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कंटिन्यूएशन में, तो प्रदेश फैल गए हैं आहारक शरीर में भी और बाहर भी, तो उसको समुद्घात कहेंगे। वैकिरिक, तेजस, आहारक और केवली। तो कहते उसका निराकरण करके यहाँ केवली शब्द लगाया, केवली समुद्घात, क्योंकि उन समुद्घातों का प्रकृत में अधिकार नहीं। या तो मात्र अभी संयोग केवली की बात है, अन्य की यहाँ बात नहीं है। वह यह केवली समुद्घात अभी उसके चार अवस्थाएं बताए, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण के भेद से चार अवस्था रूप जानना चाहिए, और ये भी एक एक समय का एक एक भेद होता है। उन भेदों में से सर्वप्रथम दंड समुद्घात के स्वरूप का निरूपण करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। परम समय दंडम करेदी, केवली भगवान प्रथम समय में दंड समुद्घात करते हैं। अब यहाँ आते 152 पृष्ठ पर, यहाँ कोई है क्या करेक्शन? 150 में किया था वो न वाला ना, प्राकृत में छठी लाइन सेंटर में एथ दिस्समाग हुआ, दिस्समान चाहिए। 154 और वो कवाड़ है, कवाऊ कवाड़। अभी हम 152 पर आए हैं। सर्वप्रथम प्रथम समय में दंड समुद्घात करते इसका भाव, यह इसका भाव है।
आवर्जीकरण के अंतिम समय के बाद,
हाँ, आवर्जीकरण पहले होता है, अब ये पहले समय में दंड किया। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट शंका, वह दंड समुद्घात क्या लक्षण वाला है, यानी किसको कहना है? समाधान, कहते हैं अंतर्मूर्त प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर केवली जिन समुद्घात करते हुए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर, यानी या तो पूर्व दिशा की ओर उनका मुंह या उत्तर की ओर, कायोत्सर्ग से करते हैं या पल्यंकासन से करते हैं, यानी पद्मासन में या खड़गासन में। खड़गासन समझते ना, खड़े होकर, हाँ, पद्मासन, क्योंकि ये दो बताने की क्या जरूरत, क्योंकि उनके जो प्रदेश जैसे बैठे हुए हैं तो ये ऐसे है ना, इतनी जगह रोकी तो उनके जो प्रदेश फैलेंगे तो इसी पद्धति से पूरे फैलेंगे, और जो खड़े हैं तो उनके तो अवगाहना ऐसे कम होगी तो उसने अवगाहना में प्रदेश फैलेंगे, तो 12 अंगुल और 36 अंगुल ऐसा जो कुछ वहां यहाँ क्या बताते देखेंगे। तो पहले में पहले उनकी पोजीशन क्या है, तो पूर्व के या उत्तर की ओर दिशा में मुंह किया हुआ। दूसरी बात, या तो खड़गासन में है कायोत्सर्ग में या तो पद्मासन में, वहां कायोत्सर्ग से दंड समुद्घात को करने वाले केवली के करो, कवली के हुआ, केवली के मूल शरीर की परिधि प्रमाण, परिधि यानी सरकमफेरेंस उसका कुछ कम 14 राजू लंबे, कुछ कम इसलिए कहा कि वो वात वलय में नहीं फैलते, तो वात वलय में यानी लोकाकाश की हाइट कितनी है 14 राजू, और वात वलय उनको छोड़ा दोनों ओर से, तो कितना छोड़ा ऊपर और कितना छोड़ा नीचे, हाँ, ऊपर कितना छोड़ा 60, नीचे तो 20-20-60 हजार योजन, तो नीचे ऊपर कितना छोड़ा, मेरा प्रश्न
ऊपर तक कम है,
कितना कम है, देखो ये तो है सिद्ध शिला, वो ईशत प्रागभार पृथ्वी, उसके ऊपर दो कोस योजन नहीं, दो कोस, एक कोस और एक कोस में 425 कम, यानी 1575 धनुष, यानी सब मिलकर एक योजन में 425 धनुष कम, और नीचे दो कोस, एक कोस और एक कोस में कम, चार कोस का एक योजन होता है, इसलिए यहाँ टोटल कितना है, एक योजन में 425 धनुष कम, दो कोस, एक कोस और 1575 धनुष, इतना अंतिम पृथ्वी के ऊपर के वातवल है, और नीचे 60,000 योजन, सॉरी 60,000 20,000 कैसे, हाँ 60,000 योजन, एक एक वात वाले 20,000 योजन का होता है, यानी पृथ्वी को लगते हुए कौन सा है, घनो दधि, फिर घनवात, फिर तनुवात, तो ये ऊपर और नीचे छोड़ा इसलिए कुछ कम कर दिया, तो कुछ कम, और उसका अभी इसे जो खड़े हैं तो उनके प्रदेश ऐसे फैलेंगे, जो बैठे हैं ऊपर से नीचे तक फैलना है तो वो तो चौड़े हो गए ना, क्योंकि ऐसे बैठे हैं तो आत्म प्रदेश फैल जाते, तो उतने प्रमाण में दंडाकार ने वो खंभे के जैसे ऊपर से नीचे तक फैलेंगे, दंडाकार रूप से जीव प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण लोक के नीचे ऊपर लोक पर्यंत वात वलय से रोका गया क्षेत्र होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से ही उस अवस्था में दंड अवस्था में वात वलय के भीतर केवली जिनके जीव प्रदेश में प्रवेश नहीं होता वो तो लोक पुराण में प्रवेश करेंगे, तब तक वो नहीं करेंगे। इसी प्रकार पल्यंकासन से समुद्घात करने वाले केवली जिनके दंड समुद्घात कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मूल शरीर की परिधि से उस अवस्था में दंड समुद्घात की परिधि तिगुनी हो जाती है, यानी वो 12 अंगुल थी वो भी 36 अंगुल हो गए। एक्चुअली परिधि कहाँ है, परंतु वो तो व्यास में लेना, उसको डायमीटर में लेना है। परिधि पूरा समकर सरकमफेरेंस होता है और यहाँ व्यास में उसका डायमीटर होता है, उससे हाँ वो भी व्यास से तिगुनी होती है ना, वो भी तिगुनी हो जाएगी, परिधि भी तिगुनी हो जाएगी। व्यास ही होना चाहिए पूरी परिधि, ये व्यास है विष्कम, ये परिधि रखेंगे नहीं तो ये केवल व्यास तिगुणा है कि परिधि तिगुणी है, ऐसा कहना चाहिए। हाँ बराबर है, परिधि लिखा है मैं भी देख रही हूँ, परंतु व्यास तिगुणा होता है कि नहीं ये मेरा प्रश्न है। वो भी तीन गुना हो जाएगा, व्यास से तिगुणा परिधि, तो इसलिए व्यास तिगुणा हुआ तो परिधि भी तिगुणी। यहाँ कारण का कथन सुगम है, इस प्रकार की अवस्था विशेष का नाम दंड समुद्घात कहा जाता है, क्योंकि सार्थक संज्ञा के ज्ञानवश यानी योग्य नाम देने से उसका ज्ञान भी बराबर हो जाता है। यथोक्त विधि से दंडाकार रूप से जीव के प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। पूरे ऐसे खंबा कहो या लकड़ी कहो, इसको पूरे फैले, परंतु इस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिनके औदारिक का योग ही होता है। नहीं वो कपाट में औदारिक मिश्र होता है ना, नहीं तो नहीं है, यानी मनोवचन का नहीं है, औदारिक का योग ही होता है, ये बात। कपाट में औदारिक मिश्र हो जाएगा क्योंकि उस अवस्था में शेष योगों का अभाव है। मनोयोग वचन योग नहीं होगा, औदारिक का योग ही होगा। अब इस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के भेद का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी यहाँ क्या बात बनती है खास, तो ये बताएंगे। तमिठ दिए असंख्य भागे हणई, केवली जिन दंड समुद्घात में आयु कर्म को छोड़कर शेष अघाती कर्मों के असंख्यात बहुभाग का हनन करते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी तक तो एक एक स्थिति कांडक होने के लिए अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त लगता था, एक फाली दो फाली तीन फाली। अब समुद्घात की क्या विशेषता है, असंख्यात बहुभाग एक समय में नष्ट हो गया। इतना पल्ले का असंख्यात भाग मान लेते मैक्सिमम था किसी का, उसमें से असंख्यात बहुभाग कट हो गया, असंख्यात भाग शेष रहा नाम गोत्र वेदिनी के सत्ता की बात। नहीं अभी एक एक समय में, एक एक समय में घात होता है। स्थिति कांडक घात कहेंगे तो उसके लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, अब ये एक एक समय में एक एक घात होगा, उसका नाम अनुसमय पड़ता नहीं, वो तो अनुवाह के लिए बताते, ये स्थितियों की घात की बात चल रही है। उस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिन आयु कर्म को छोड़कर तीन अघाती कर्मों की कितनी लिखी है, पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति सत्कर्म की, तत्काल उपलब्ध्यमान स्थिति के असंख्यात भूभाग का घात करके असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति को स्थापित करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। घात होगा, उसका नाम अनुसमय पड़ता नहीं, वो तो अनुवाह के लिए बताते, ये स्थितियों की घात की बात चल रही है। उस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिन आयु कर्म को छोड़कर तीन अघाती कर्मों की कितनी लिखी है, पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण सिद्धि सत्कर्म की, तत्काल उपलब्ध्यमान सिद्धि के असंख्यात भूभाग का घात करके असंख्यात वे भाग प्रमाण सिद्धि को स्थापित करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, इस प्रकार एक समय द्वारा ही इस प्रकार का स्थिति घात कैसे हो गया? समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केवली समुद्घात की प्रधानता से उसकी उपपत्ति होने में यानी उसको होने में कोई बाधा नहीं होती है। यही तो विशेषता है केवली समुद्घात की, एक एक समय में स्थितिघात हो रहा है। अब यहीं पर अनुभाग का महात्म्य दिखलाने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। अभी अनुभाग में क्या होता है वो भी बताएंगे। शेष च अनुभागस्य अपसत्थानम अनंता भागे हणदि तथा शेष अनुभाग संबंधी अप्रशस्त अनुभागों के, ये शब्द लगा दिया, मात्र अनुभाग का घात होता नहीं कहा, अप्रशस्त जो अनुभाग है तो उसके अनंत बहुभागों का घात करते। तो मेरा प्रश्न, ये अनुभाग कैसे, किस रूप में है, स्पर्धक रूप है कि पुष्टि रूप है? पुष्टि रूप से। आप क्या कहते हैं, एक ने कहा स्पर्धक, एक ने कहा पुष्टि रूप से, आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मालूम नहीं। कुछ तो एक बोलो ना, यार दो है मत, बोलो। मालूम नहीं, बोलो अश्विन भाई, उनको बोलने दो ना। अरे आघाती कर्म में कुष्ठि होती ही नहीं। कुष्ठि किसमें हुई थी? मोनी में हुई थी ना, ज्ञानावरण में हुई ना कहीं कहीं, ख्याल में ही बात। तो ये अनंत भूभाग का स्पर्धक रूप से ही चल रही बात है। अप्रशस्त की बात, क्योंकि यहाँ प्रशस्त भी पड़े ना, घात किसका हो रहा है? अप्रशस्त का। केवल असाता ही नहीं है, वो सब निज गोत्र हुए सभी पड़े, अपर्याप्त नाम कर्म पड़ा है सब, उदय रूप कुछ नहीं है फिर भी असत्ता में सभी पड़े है। केवल वो नाम कर्म के 13 गई और दशनावरण की वो गई है, वो तो सभी पहले तो वाली चली गई है, सभी पूरा ही घात हुआ है तीन घाती का। परंतु यहाँ पर जो अघाती बाकी है उसमें तो बहुत सारी पड़ी है अभी अप्रशस्त प्रकृतियां। तो उक्त शपक क्षीण कषाय गुणस्थान के द्विचरम समय में घात करके जो अनुभाग शेष रहा उसके अनंत भूभाग का घात कर अनंत वे भाग में अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग सत्कर्म को स्थापित करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रशस्त प्रकृतियों का यहाँ पर घात नहीं होता चाहिए ना, स्थितिघात ही होता है, अनुभाग घात नहीं होता। देखो जब स्थिति घात होता है तो दोनों में होता है, प्रशस्त अप्रशस्त, और अनुभाग घात मात्र अप्रशस्त में होता है। यहाँ लिखा है क्षीण कषाय के द्विचरम समय में घात करके जो अनुभाग शेष रहा उसके बाद अनुभाग का घात नहीं हुआ। अभी अनुभाग की बढ़ोतरी क्यों हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं पूछती हूँ, अनुभाग की बढ़ोतरी होने के लिए कारण क्या होना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगी, इनका प्रश्न। अनुभाग जब बढ़ता है उसके लिए कुछ कारण होना चाहिए, कषाय नहीं, नया बंद होना चाहिए। देखो दसवें गुणस्थान में अंतिम स्थिति बंदी ना, कितनी बंदी नाम कर्म की?
एक वर्ष के संख्या प्रश्न
आठ मुहूर्त की बंदी यशस्व कीर्ति कितना
बढ़ेगा
है ना? अब मैक्सिमम अनुभाग वहां तो उच्च गोत्र बन रहा है, यशस्व कीर्ति बन रहे, तो मैक्सिमम अनुभाग कब बंदा? अंत में बंदा। और उनमें स्थिति कितनी बंदी? आठ मूर्त उन्होंने, बारह वाला छोड़ दो, अभी आठ की बात करेंगे। तो जो अंतिम में मैक्सिमम अनुभाग वाला बंद हुआ था वो तो आठ मुहूर्त का, आठ मुहूर्त में चले जाएंगे ना, क्यों? तो बंदा हुआ चले जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जब बंदा था तो आठ मुहूर्त तक ही अनुभाग मैक्सिमम उदय में आया, और बाद में हीन अनुभाग हो गया उदय में। ख्याल में मेरे प्रश्न क्या है? तो वहां जितने परमाणु पड़े थे पहले बंदे हुए, तो वो नए बंधने के कारण उनका अनुभाग बढ़ गया, इतना मैक्सिमम हो गया। सत्ता में जितने पल्ले के असंख्यात हुए भाग प्रमाण स्थिति में पड़े थे ना, अनुभाग की अपेक्षा भी बात कर रही हूँ, स्थिति बढ़ रही ऐसा नहीं कह रही हूँ। वो कितने पड़े थे पल्ले के असंख्यात हुए भाग वाले जो निषेक पड़े थे, अनुभाग की अपेक्षा उनका अनुभाग उस दसवें गुणस्थान के अंत में बढ़ा, क्योंकि नया बंध मैक्सिमम अनुभाग वाला था, तब उनका अनुभाग बढ़ गया। प्रशस्तों में अनुभाग बढ़ने, क्योंकि अनुभाग के बढ़ने को भी संक्रमण कहेंगे। मैक्सिमम मिनट मैक्सिमम कब बंधेगा? बंधेगा दसवें के अंत में, क्योंकि वहां मिनिमम कषाय है। अनंत अनुभाग को कैसे हमें बताएंगे? वो तो अविभाग प्रतिच्छेद में गिनेंगे उसको। सभी को नहीं होता वो तो कहते हैं ना, हर एक को नहीं होता है, कुछ भी हो नहीं होता है, वही तो बता रहे। अभी नियम है तो उसमें क्या करेंगे आप? हर एक की पोजीशन, हाँ वो तो, क्योंकि उसका केवली का काल भी हिनाधिक है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन है। आयु भी अलग है, उसका काल भी अलग है। पहले जब यहाँ मूल में कह रहे हैं हर एक को नहीं होता, तो उसमें फिर विचार करने की गुंजाइश कहाँ है? हाँ, छह महीने का हाँ, क्योंकि वो तो कांडक पहले हो ही रहे थे, वैसे तो कांडक घात हो ही रहे थे, तो बिना समुद्घात के कांडक से उनकी स्थिति एडजस्ट हो जाती होगी। ख्याल में आती है? जिनके असंख्यात वर्षों में डिफरेंस है उसमें होते हैं। तो यहाँ पर प्रशस्त प्रकृतियों में स्थिति, यानी प्रशस्त अप्रशस्त दोनों में स्थिति घात होता है, परंतु अनुभाग का प्रशस्तों में घात नहीं होता, अप्रशस्त में घात होता है। प्रशस्त में बढ़ता ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बढ़ता है जब विशुद्धि बढ़ती होगी तो, या उसमें भी नया जो अनुभाग अधिक बंध से साथ उसका पुराना अनुभाग बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ने के लिए कोई वहां कारण नहीं रहा भी। अप्रशस्तों में घट रहे हैं, वो पहले से ही घट रहे हैं ना, मगर उन्होंने उसको, परंतु उसकी घात का अर्थ क्या है? मैक्सिमम अनुभाग कट नहीं हुआ है, अनुभाग कम होने, कुछ परमाणु उतने घात उतने अनुभाग रूप से पड़े रहेंगे। अनुभाग कांडक होगा तो ही ऊपर के विशिष्ट स्पर्धकों का पूरा घात होगा। अनुभाग कम होना अलग बात है, उदय में कम आना अलग बात है, और सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग घात होना वो अलग बात है। इसलिए वो बारहवें के बाद सीधा उन्होंने यहाँ पर लिया, केवली समुद्घात में लिया। गुणश्रेणी निर्जरा का जिस प्रकार आवर्जित करण में प्ररूपण किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यानी जो गुणश्रेणी वहां बनी थी आवर्जित करण में, वही यहाँ पर भी चलेगी। इस प्रकार केवली जन दंड समुद्घात करके उसके बाद अनंतर समय में कपार समुद्र से परिणमन करने वाले के स्वरूप विशेष का निर्धारण करने के लिए उत्तर सूत्र का अवतार होता है। तदो विधिय समय कवाड़म करेगी, उसके बाद दूसरे समय में केवली जिन कपाट समुद्घात करते, उसका नाम है कपाट, जो कपाट के समान हो वह कपाट है। शंका, उपमार्थ क्या है, यानी कपाट की उपमा दी है उसका अर्थ क्या है? समाधान, जैसे कपाट मोटाई की अपेक्षा अल्प ही होकर चौड़ाई और लंबाई की अपेक्षा बढ़ता है, यानी जो ये हमारा ये कपाट है ऐसा कम है, हाइट भी ज्यादा है और ऐसी भी चौड़ाई भी ज्यादा, उसी प्रकार यह भी मूल शरीर के बाहुल्य की अपेक्षा अथवा उसके तिगुणे बाहुल्य की अपेक्षा, तिगुणे इसलिए कहा कि पद्मासन हो तो, जीव प्रदेशों के अवस्था विशेष रूप होकर कुशकम 14 राजु प्रमाण आयाम की अपेक्षा तथा 7 राजु प्रमाण विस्तार की अपेक्षा, वृद्धि हानिगत विस्तार की अपेक्षा वृद्धि को प्राप्त होकर स्थित रहता है वह कपार समुद्घात है। अभी इसमें दो दो की बात एक की है, इसलिए हमें इतने वाक्य लगते हैं। पहले से हमने देखा था कोई पूर्व की ओर मुख किए हुए है और उसके तो खड़गासन से, तो उनके पहले से पहले जैसे प्रदेश फैले थे दंडाकार ऊपर से नीचे तक पात वाले को छोड़कर, अभी उसकी भीड़ तो उतनी रहेगी। अब ये कैसे फैलेंगे? ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी अभी पूर्व की तरफ जिसने मुंह किया है उसके प्रदेश कैसे फैलेंगे? पूर्व पश्चिम नहीं, दक्षिणोत्तर। तो दक्षिणोत्तर लोक की सर्वत्र भीड़ कितनी है? लोक की बात, ये लोक सर्वत्र 7 राज्य है, ये 7 राज्य कहीं से भी रखो, दक्षिणोत्तर 7 राज्य। उन्होंने पूर्व की तरफ मुंह किया है तो ये ऐसे दक्षिणोत्तर फैलेंगे, पूर्व की तरफ मुंह है ना इनका, तो क्या उल्टा हुआ? ये पूर्व ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर, यानी ये दक्षिण ये उत्तर। अभी किसी ने पूर्व की ओर मुंह किया और प्रदेश ऐसे फैलेंगे, पूर्व की ओर मुंह किया तो प्रदेश कैसे फैलेंगे? 7 राज्य फैलेंगे ना, उत्तर दक्षिण फैलेंगे। और जिसने उत्तर की मुंह की तरफ मुंह किया है तो उसके पूर्व पश्चिम फैले, परंतु पूर्व पश्चिम विस्तार ऐसा है, यानी इसी आकार से उनके प्रदेश फैलेंगे। केवल विड्थ कितनी? जितनी शरीर की विड्थ है उतनी। नहीं, उसके आधा हो गए, कपाट अवस्था में अलग अलग उसका, यानी उसकी जो डायमेंशन है उसका विस्तार है क्षेत्रफल है वो अलग अलग होगा। देखेंगे, ये हमने इसमें पढ़ा था, जीवकांड में पढ़ा था। यानी एक क्या बात है, किस किस ओर मुंह किया है और वो कैसे स्थित है, तो उसका उतना ही विस्तार होगा। जितना दंड किया, दंड का था दंड रहा, अब वो दंड ऐसा हॉरिजॉन्टल फैलेगा कहां तक? वात वाले को छोड़कर लोक के अंत तक। साइड में भी वात वाले कितना है? वो 7 राज्य 5 योजन 4 योजन जो कुछ है, नीचे ज्यादा है बीच में कम होता है, वो उसकी अभी बात छोड़ेंगे। वात वाले को छोड़कर इतना फैलता है, उसको कहेंगे कपाट।
एक बार केवल ज्ञान कभी प्राप्त होता है, कभी जो स्मृति में है वो उनका जो केवल ज्ञान का कहते हैं तेरहवें गुण तक, कभी तक वहाँ पे वो स्थिति से
अरे विहार करते हैं, हमने कितना देखा
है। तो वो तो खुद कमन नहीं करते हैं, जिन का विहार होता है।
अरे ये इसका अर्थ क्या है? खुद भी उठेंगे चलेंगे कि नहीं चलेंगे?
कमन करते कभी तो जमीन के ऊपर से
गमन करते, फिर भी उनका तो क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, विहार गति चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, फिर भी कैसे भी जाने दो, तो समोसर समोसरण में बैठे हैं, तो उठ खड़े होकर जाएंगे कि बैठे बैठे जाएंगे? वही तो कह, ये तो बात आई थी नहीं, उनका जो विहार है, उनके जो वचन है, वो तो बिना इच्छा के होता है, हमने कल ही देखा था। ऐसा नहीं कि वो तो उठ के लेट जाएंगे, ऐसा मत सोचो। हाँ, फिर से, जैसे कपाट मोटाई की अपेक्षा अल्प ही होकर चौड़ाई और लंबाई की अपेक्षा बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी मूल शरीर के बाहल्य की, बाहल्य यानी चौड़ाई, विड्थ उसकी, अथवा उससे उसके तिगुणे बाहल्य की अपेक्षा, क्योंकि पद्मासन होगा तो तिगुणा होगा, जीव प्रदेशों के अवस्था विशेष रूप होकर, यानी वो कौन सी अवस्था विशेष हुई, कपाट अवस्था हुई, कुछ कम चौदह राजु प्रमाण आयाम, आयाम यानी लंबाई, क्योंकि वात वाले को छोड़ा इसलिए कुछ कम चौदह, तथा, अभी तथा लिखा है ना, उसमें दो बातें हैं, सात राजु प्रमाण विस्तार की अपेक्षा वृद्धि हानिगत, ये अपेक्षा की बात कॉमा लगाना, सात राजु प्रमाण विस्तार की अपेक्षा यानी दक्षिणोत्तर फैले, क्योंकि पूर्वाभिमुख है। दूसरी, वृद्धि हानिगत विस्तार की अपेक्षा, ये पूर्व पश्चिम विस्तार है और ये उत्तराभिमुख है। देखो, जिसने पूर्व की ओर मुंह किया है उसके प्रदेश दक्षिणोत्तर फैले, सर्वत्र सात राज्य, जिसने उत्तर की तरफ मुंह किया है उसके हीनादिक, यानी ये हीनादिक, नीचे सात राजू, बीच में एक राजू, फिर पांच राजू, फिर एक राजू, इसको हीनादिक, वृद्धि हानि रूप, लोकाकाश के आकार जैसा, जो हमेशा हम फ्रंट व्यू देखते हैं उस आकार के उनकी कपाट रचना हो जाएगी। हाँ, उसके एरिया काउंट करेंगे तो इससे आधी हो जाएगी। अब कहते हैं वृद्धि को प्राप्त होकर स्थित रहता है, यानी दोनों जो जिस ओर मुंह किया है उस अपेक्षा से उतनी उतनी वृद्धि होकर वो स्थित रहता है, वह कपाट हुआ, वह कपाट समुद्घात कहा जाता है, क्योंकि इस समुद्घात में स्पष्ट रूप से ही कपाट का संस्थान, संस्थान यानी आकार उपलब्ध होता है। ये वाक्य का अर्थ ख्याल में है ना, ये अलग अलग जीवों की अपेक्षा ये अलग अलग बातें उन्होंने एक ही वाक्य में बात बताई। इस समुद्घात में पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख केवलियों के कपाट क्षेत्र के विष्कम्ब के भेद का उदाहरण कर, क्योंकि हाइट तो सबकी सेम है, वात वाले छोड़कर पूरे चौदह राजो, और विष्कम्ब ने अभी फैला हुआ ऐसा, एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसा कितना है, तो जो शरीर की उनकी जो थी 12 अंगुल या 36 अंगुल जो हम कहेंगे, और ऐसे कितना फैला है, तो उनके दोनों के क्षेत्र में फर्क है, चौड़ाई अलग अलग है। पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ऐसे आगे पीछे का हाइट वाइज और ऐसी विड्थ वाइज, तीन डायमेंशन है उसमें, तो एक डायमेंशन तो निश्चित है 14 राज्यों में कुछ का, और दूसरी डायमेंशन जो है वो शरीर की डायमेंशन तो खड़गासन है क्या पद्मासन है, उसकी अलग अलग ही देंगे, और ऐसी पूरी फैली है वो उत्तर की तरफ मुंह है के पूर्व की तरफ मुंह, तो कहते हैं विष्कम्भ का भेद का उदाहरण करने, विष्कम्भ ने उसकी विर्थ जानकर, किस ओर मुंह है उसके जानकर, पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख केवलियों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। परंतु अभी इसमें क्या और विशेषता है, इस अवस्था विशेष में विद्यमान केवली के औदारिक मिश्र का योग होता है। जैसे हम देखते हैं ना, पहले विग्रहगति में तो कारमान था, फिर शरीर मिश्र अवस्था में औदारिक मिश्र हो जाता है, वैसे यहाँ एक समय के लिए औदारिक मिश्र अवस्था है, क्योंकि उनके कारमण और औदारिक इन दो शरीरों के अवलंबन से जीव प्रदेशों के परिस्पंदन रूप पर्याय की उपलब्धि होती है। अभी अवस्था विशेष में विद्यमान जीव के द्वारा किए जाने वाले कार्य भेद के दिखलाने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। यानी अभी तीसरे समय में और क्या करते हैं उसकी बात यहाँ बताएंगे। हाँ, ये जो मिश्र क्यों कहते हैं, ये तो एक तो रूढ़ी से बताते हैं और दूसरे जहाँ प्योर कारमान का है और बाद में अभी हम विग्रह गति की अपेक्षा करते हैं, कारमान का था और बाद में औदारिक का योग होने जाने वाला और बीच में दोनों की मिश्र अवस्था है, उसको औदारिक मिश्र कहेंगे या वैकृत मिश्र कहेंगे। अभी यहाँ पर औदारिक था का योग, दंड में औदारिक का योग है और प्रतर में कारमण होने वाला है, तो इन बिटवीन वो मिश्र वाला हो जाता है। एक तो उस समय भी कर्म का तो ग्रहण होता ही है, उसका तो अवलंबन है ही है, फिर भी ये रूढ़ी से ऐसी बात आती है। उसमें ऐसा नहीं समझना कि औदारिक को ग्रहण करता है तो कारमण को ग्रहण ही नहीं करता, ऐसा नहीं समझना। तो क्या होता है,
सभी औदारिक
चल ही रहा है ना, वही तो मैंने अभी बताया, वो नहीं होता ऐसा नहीं समझना, फिर भी वो ऐसा ही जो रूढ़िगत उपदेश आता है इसके द्वारा, इसकी चर्चा तो पहले भी हो चुकी है। दोनों दोनों का मिश्र अवस्था, इसके बाद अकेला कारमण होने वाला था, प्रतर में कारमण हो जाएगा और दंड में औदारिक था और इन बिटवीन औदारिक मिश्र। हाँ, तो
क्योंकि उनके कारमण और औदारिक दो
ये जो जीव का परिस्पंदन किसके अवलंबन से हो रहा है, तो उन दो शरीरों के अवलंबन से हो रहा है। हाँ, अब यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते जो जे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा।